लास्ट चैप्टर है कृष्ण भावनामृत का अनुपम उपहार, तो सातवां अध्याय है कृष्ण भावनामृत में मुक्ति, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। तो आप में से कितने लोग पढ़ के आए हैं इसको? तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? अच्छा, अब व्हाट यू पढ़ा आपने? क्यों नहीं पढ़ा आपने? सो आप देखेंगे कि प्रभुपाद ने बहुत कुछ इसके अंदर बताया, मतलब इसके ऊपर 10 क्लासेस भी की जाएं तो शायद कम होंगी, है ना। बहुत कुछ प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं। सो मैं भी बहुत सोच रहा था क्या इसके ऊपर बात करें, तो मैंने 25, 30, 40 बार पढ़ा इसको, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ऐसा पॉइंट पकड़ के उस पर चर्चा की जाए। सारे ही पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, और मतलब प्रभुपाद बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सटीक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं इसको। और 7:45 मुझे क्लिक हुआ कि क्या जाके चर्चा करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसमें प्रभुपाद जो है वो मुक्ति की कई परिभाषाएं दे रहे हैं। हाँ, आपने पढ़ी? ऐसे एक परिभाषा प्रभुपाद दे रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को भगवान समझने का दावा नहीं करते, हम मुक्त हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि हम अपने आप को अगर भगवान नहीं समझ रहे तो हम मुक्त अवस्था में हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने घोषणा अगर नहीं की कि हम भगवान हैं तो बद्ध हैं, नहीं तो मुक्त हैं। अगर हमने मन में भी सोच लिया कि हम भगवान हैं तो प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो क्या हम सोच रहे हैं हम भगवान हैं? सोच रहे हैं? हाँ, आप सोच रहे हो? एक्चुअली में हम सभी सोच रहे हैं कि हम भगवान हैं। जब तक हमारी भोग दृष्टि है, जब तक हमें कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है, तब तक हम अपने आप को भगवान समझते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु प्राप्त करने के पीछे हमारी इच्छा है कि हम इसका भोग करेंगे, है ना। तो हम भोग क्यों करेंगे? क्योंकि हम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो है कृष्णा। सो जब तक लेश मात्र भी अगर भोग की गंध भी हमारे मन में अगर है तो हम मुक्त नहीं हैं, है ना। तो प्रभुपाद डिस्कशन करते हैं, और प्रभुपाद ने बहुत जगह चर्चा किया कि, और प्रभुपाद ने बहुत बार ये श्लोक भी कोट किया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना। बहुत बार प्रभुपाद ने ये इसके ऊपर बहुत बहुत बार कोट किया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर लेश मात्र भी इच्छा है भुक्ति की, भोग करने की, यहाँ तक कि प्रसाद को भी अगर भोग करने की इच्छा है, अगर आम तौर पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि फीस्ट प्रोग्राम फीस्ट होती है अगर, तो भगदड़ मच जाती है, लोग लाइनों में टूट पड़ते हैं। हाँ, और धोती कुर्ते वाले भक्त भी टूट पड़ते हैं, नहीं, लोग बुरा मान जाते हैं, है ना। तो हालांकि किसके लिए ललायत हैं? प्रसाद के लिए ललायत हैं। प्रसाद के लिए ललायत हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आपने किसी और वैष्णव को धकेल कर खुद आगे बढ़ने की कोशिश की, भोग हो गया वो, क्योंकि फिर प्रसाद की मानसिकता खत्म हो जाती है और हम वो हलवा पूड़ी, हाँ, और शाही पनीर, हम उसको भोग की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं कि हम इसको ये हमें ऐसा नहीं हो कि मेरे वहाँ पहुँचने तक ख़त्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे सारे आइटम्स मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं एक भक्त हूँ। तो ये मानसिकता भी जो है ये भोग की मानसिकता है, नहीं आप सहमत हैं इससे? सो हम क्या करें, मतलब अगर फीस्ट है तो क्या मतलब बाहर फुटपाथ पे बैठ जाएं कि कोई सूखी रोटी के टुकड़े डालेगा तो खाएंगे दिखाने के लिए कि हम भोगी नहीं है? ऐसा नहीं है, आप लाइन में लगो आराम से, और जितना आपको वो स्वेच्छा से सर्व करने वाला डाल रहा है उतना लोअर एक साइड पे हो जाओ, है ना। और जो चीज़ स्वादिष्ट लग रही है उसको ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, वो नए भक्तों के लिए है। जो स्वादिष्ट प्रसाद बनाया जाता है नए भक्तों को आकर्षित करने के लिए, है ना। आप थोड़ा सा लो और भगवान का प्रसाद समझ के उसको आदर देने के लिए थोड़ा सा ग्रहण कर लो और साइड पे हो जाओ, है ना। लेकिन अगर हम भर भर के उसको खाएं और मतलब पेट भी ख़राब हो जाए कई बार लोगों के पेट भी ख़राब हो जाता है, और आप देखोगे द्वादशी या कभी वृंदावन में कभी फीस्ट होती है, कुछ भी होते हैं, तो आप अगले दिन बहुत सारे डिवोटी कहते हैं पेट ख़राब हो गया, तो इतना क्यों खाया था? वो तो कृष्ण प्रसाद था, तो कृष्ण प्रसाद था तो फिर सुबह त्यागा क्यों? उसको अंदर समेट के रखते नहीं? तो जब तक हम उसको खाने की और टेस्ट लेने की जब तक हम सोच रखेंगे तो आप अपने आप को भक्त समझ सकते हो, लेकिन ज़्यादा उन्नत भक्तों में गिनती नहीं होगी, है ना। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भाल ना खाबो और भाल ना परिबो, हाँ ज़्यादा अच्छा मत खाओ, ज़्यादा अच्छा मत पहनो, है ना, और 24 घंटे भगवान का नाम लो। तो ये एक अच्छे भक्त की पहचान होती है। एक जो अच्छा भक्त है वो लाइन में नहीं लगेगा, वो बोलेगा लोगों को लेने दो, हाँ मैं लाइन में लग के टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं अपना जप करूँगा बैठ के। वो जप करेगा और जब भीड़ छट जाएगी तो जो मिलेगा वो भक्त आराम से पा लेगा, है ना। क्योंकि महत्वपूर्ण है कि आपने शरीर की रक्षा के लिए कुछ ग्रहण कर लिया, टेस्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम स्वादिष्ट भोजन के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम भोग भी नहीं करना चाहते, है ना। तो आवश्यकता है कि हम टाइम वेस्ट नहीं करें, है ना। तो जो एक भक्त है, जो अच्छा भक्त होता है, उसके अंदर एक गुण होता है अव्यर्थ कालत्वम, है ना, जो समय वेस्ट नहीं करता वो, है ना, बहुत एक एक क्षण उसका सदुपयोग करता है, ये सोचता है कि ये क्षण भी भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किसी और भक्त के लिए हम 5 घंटे लाइन में लग के प्रसाद लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो सेवा है, लेकिन हम अपने लिए इतना तकलीफ नहीं सहेंगे। सब ले लें, उसके बाद कुछ बचेगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो हरी इच्छा, है ना। सो ये बहुत आवश्यक है। तो जब तक कहने का मतलब ये कि जब तक थोड़ी सी भी भोग की इच्छा मन में रहेगी तो इसका मतलब है हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, है? और भुक्ति मुक्ति, अगर मोक्ष की भी इच्छा है तो भी वो प्रॉब्लम है, अगर हम मोक्ष पाना चाहते हैं तो तकलीफ का कारण है वो। और रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक भी लिखा है, हाँ भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, है ना। आगे क्या है कि तब तक जब तक भुक्ति मुक्ति की इच्छा रूपी पिशाची, मुक्ति की इच्छा को पिशाची से उन्होंने तुलना की है उसकी, कि जब तक वो हृदय में रहेगी तब तक जो भगवान जो कृष्ण प्रेम जो है वो हृदय में कभी भी उदित नहीं होगा, कभी भी प्रकट नहीं होगा, है ना। तो भुक्ति मुक्ति, सो क्या था, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तो जो सिद्धियों के पीछे लगे हैं, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे शक्ति के रूप में हो, चाहे अनिमा लघिमा प्राप्ति वशी तो ये जितने भी अष्ट सिद्धियां हैं जो उसके पीछे लगे हैं वो तो स्पष्ट रूप से भोगी हैं, उसके बारे में बोलने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, है ना। सिद्धियां क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? ताकि दूसरों को दिखा के प्रभावित कर सके, नहीं अदरवाइज और सिद्धियों की क्या जरूरत है। आपने अगर लघिमा सिद्धि ले ली, लघिमा का मतलब है छोटे से छोटा बनने का, तो क्या मतलब, चूहा बनना चाहते हो, कीड़ा बनना चाहते हो, क्या चाहते हो आप, है ना। हम चाहते हैं कि हम अनिमा सिद्धि लेके करोड़ों लोगों के सामने अपने इस सिद्धि का प्रदर्शन करें, ताकि लोग बोले हो ये तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, तो करोड़ों लोग आपके पीछे चलना शुरू कर दें, तो ये भी भोग है। इसमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति की अपेक्षा है, कृष्ण इसमें पिक्चर में नहीं है, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, जब तक हम अपने आप को भगवान समझने का गर्वित अहंकारपूर्ण दावा नहीं करते तब तक हम मुक्त हैं। और फिर प्रभुपाद दूसरी परिभाषा देते हैं कि मुक्ति का अर्थ है समस्त मिथ्या धारणाओं से छुटकारा। तो जितनी भी तरह तरह की कुधारणाएं हैं कि चतुर्भुज रूप हो जाएगा, या प्रकाश में विलीन हो जाएंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, या जैसे चार्वाक ऋषि हैं वो बोल रहे हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनर्जन्म भवेत्। कहाँ होता है पुनर्जन्म? भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनर्जन्म भवेत्, कहाँ होता है? शरीर है खत्म, खेल खत्म। इसका मतलब क्या है कि चोरी करो, डाका डालो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि चाहे आपको चोरी डाका कुछ भी करना पड़े और घी पियो, घी विलासिता की निशानी है। तो मतलब कुछ भी करके भोग करो, सुख चैन की बंसरी में जाओ, और पूरे ऐशो आराम से जियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार शरीर नष्ट हो गया फिर किसने देखा है। तो ये सब कुधारणाएं हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विशेष रूप से प्रकट हुए यहाँ पर ये सारी समस्त कुधारणाओं को नष्ट करने के लिए, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि मैं प्रूफ रीडर हूँ, मैं किताबों में भी गलतियाँ निकालता हूँ और लोगों में भी गलतियाँ निकालता हूँ। अगर आपने पीछे ढांस लगाई हुई है तो आप भोग कर रहे हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि अगर आप पीछे ढांस लगा के यूं बैठे हो तो आप अवैध संबंध बना रहे हो। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो कथन है, आप बोलोगे कैसे, मतलब ये ढांस लगाया और अवैध संबंध, मतलब कैसे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं देखो आपने ढांस लगाया और आपको सुख की अनुभूति हुई नहीं, और ये जो पीछे जो सहारा है ये प्रकृति है, तो आप प्रकृति की गोद में जाके बैठ गए सुख लेने के लिए। हाँ, तो आपने परस्त्रीगमन कर लिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे इतना दूर जाके सोचते थे, है ना। जैसे मंदिर में भी लोग जो हैं जितने मंदिर के पिलर हैं उस पे ऐसे पीठ लगा के बैठेंगे, अरे क्यों बैठे हो, भगवान की संपत्ति है वो, आप क्यों भोग कर रहे हो। तो एक बार हमने एक मंदिर में ये बात बोल दी थी तो विवाद खड़ा हो गया था, आपने ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन कुछ भी कुधारणा रहेगी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उसको काट देते थे। जो लोग भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत लालायित रहते थे, हाँ, सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको काटने के लिए दृष्टा और दृश्य का विचार प्रस्तुत किया। हाँ, कि क्या आप दृश्य हो के दृष्टा हो? सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि आप दृष्टा नहीं हो, दृष्टा एक ही है कृष्णा, आप दृश्य हो। तो जब हम भगवान के सामने जाएं तो हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए भगवान को, हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 100 में से 100 लोग जो हैं वो प्रभुपाद का भी अतिक्रमण करके और सामने जाके भगवान के दर्शन करेंगे गुरु की ओर पीठ करके, सो बिल्कुल सदाचार के खिलाफ है। दर्शन हमें करने चाहिए प्रभुपाद से पीछे रहकर। हाँ, क्यों हम प्रभुपाद से पीछे रहकर हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए? क्योंकि हम लोग प्रभुपाद नुगाएं, हम लोग प्रभुपाद को फॉलो करके प्रभुपाद का अनुसरण करके हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हम भगवान के दर्शन की उत्कंठा में हम प्रभुपाद की तरफ अपनी पीठ नहीं करना चाहते हैं, है ना? तो ये सदाचार है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये दिखाया अपने जीवन चरित्र में। चैतन्य महाप्रभु कभी भी जगन्नाथ जी का दर्शन आगे जाकर नहीं करते थे, हमेशा गरुड़ स्तंभ से पीछे रहकर दर्शन करते थे कि गरुड़ जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मैं उनका अतिक्रमण नहीं करना चाहता। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि अगर हम गरुड़ जी के पीछे खड़े होंगे, और क्योंकि गरुड़ जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो भगवान उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते रहेंगे, और कभी ऐसा होगा कि भगवान थोड़ा सा साइड पर भी देखेंगे तो भगवान हम पर भी कृपा दृष्टि डाल सकते हैं। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम प्रभुपाद से पीछे रहकर हम भगवान के दर्शन करें, भगवान को प्रस्तुत करें अपने आप को सेवा के लिए। मंदिर आने का ये तात्पर्य है, मंदिर आने का तात्पर्य ये नहीं है ओ आज तो भगवान ने पीले रंग की ड्रेस डाली है बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये अच्छी बात है, अच्छा है ऐसा सोचना, लेकिन उससे भी अच्छा है अपने आप को भगवान को प्रस्तुत करना, है ना? ये उससे ज़्यादा उत्तम विचार है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस तरह से लोगों को जो सही मानसिकता है, सही सिद्धांत है, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया। फिर तीसरी परिभाषा प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं मुक्ति की, कि उचित ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकते हैं। सो उचित ज्ञान क्या है? कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कि जब जीव जो है ये जान लेगा कि वो कृष्ण का नित्यदास है तो मुक्त हो जाएगा। और प्रभुपाद कह रहे हैं उस समय क्या होगा, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, है ना? और प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक बार ये ज्ञान हो गया हमें तो फिर इसका, इसके अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद कह रहे हैं कि फिर इसका अनुभव होना भी शुरू हो जाएगा। जब एक बार ये ज्ञान होगा कि हम, मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, तो ये जान लिया और उसके जानने के बाद प्रभुपाद कह रहे हैं, ये जानने के बाद ऐसा नहीं कि आप समाधि में चले जाओ एक लोटस की तरह। एक लोटस मतलब क्या, लोटस कहते हैं कमल, तो एक कमल की तरह आप समाधि में मत चले जाओ। हाँ, तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद कि किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह केवल समाधि की दशा है जिसमें कोई पद्मासन में कई दिनों तक एक कोने में पड़ा रहे। तो एक बार आपने ये जान लिया कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, तो भगवान का नित्य दास हूँ तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य एक कोने में बैठ के समाधि में जाना नहीं है, हमारा कर्तव्य है जो एक दास का कर्तव्य होता है वो क्या होता है, सेवा करना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आपने इस ज्ञान को विज्ञान में बदलना है तो सेवा में लग जाओ, है ना? तो अगर सेवा में लग जाएंगे तो क्या होगा, हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। भगवान के दर्शन, हम क्या भगवान के दर्शन करना कठिन है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान के दर्शन करना बहुत ही सरल है, भक्त को बहुत ही सुलभ हो जाते हैं भगवान के दर्शन करना। क्यों? क्योंकि जो भगवान की प्रकृति होती है भक्त भी उसी प्रकृति को प्राप्त कर लेता है सेवा के बल पर, है ना? इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे बिना वेतन का नौकर रख लो अपने यहां पर, मुझे वेतन नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझे अपने यहां नौकर रख लो, अगर आप वेतन देना चाहते हो तो मुझे और सेवा दे दो, मैं और वैष्णवों की सेवा कर सकूं, इतना वेतन दे दो, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये इस विधि के द्वारा, सेवा की विधि के द्वारा हम लोग जो हैं, जो भगवत ज्ञान जो हम सब जान चुके हैं, हम में से किसी को भी अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, उनके दास हैं, लेकिन अभी तक हमें अनुभूति नहीं है, तो वो अनुभूति होगी जब हम अच्छे से भगवान की और गुरु की सेवा में जुड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको भगवान की या प्रभुपाद की सेवा के लिए, आप प्रभुपाद से आगे, प्रभुपाद के विग्रह से आगे जाके भी सेवा कर सकते हो, जैसे गोविंद है, गोविंद कौन था, चैतन्य महाप्रभु का सेवक था ना, है ना, तो जब उसकी सेवा थी, जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करके आते थे जगन्नाथ मंदिर में, तो वो दोपहर को उनकी मालिश करता था। एक बार गोविंद बाहर खड़ा हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य करके आए, बहुत थके हुए थे, तो अपने कमरे की चौखट में लेट गए और सो गए वहीं पर। अब वो तेल की शीशी जो थी वो कमरे के अंदर थी, तो अब गोविंद सोच में पड़ गया कि अब मैं सेवा कैसे करूं, कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु का जो है वो उनकी जो मालिश करूं, मसाज करूं। तो बहुत सोचने के बाद उसने चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है उसको कपड़े से ढका, एक कपड़े से ढका, प्रणाम किया और ऊपर से लांग गया, फिर उसने तेल की शीशी उठाई और चैतन्य महाप्रभु की मालिश की। मालिश करने के बाद एक कोने में बैठ गया और जप करना शुरू कर दिया उसने। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ी देर के बाद उठे, तो उन्होंने बोला तुम अंदर कैसे आ गए, तुमने प्रसाद पाया? तो गोविंद ने कहा नहीं, आप लेटे हुए थे रास्ते में, मैं आपको लांग के कैसे जा सकता था प्रसाद पाने के लिए। तो उन्होंने कहा जब मैं यहां पर लेटा तो तुम कमरे के अंदर नहीं थे, तो तुम कमरे के अंदर कैसे पहुंचे? तो उसने कहा मैं आपको लांग के पहुंचा। तो उसने कहा जब एक बार लांगा था तो दूसरी बार भी लांग लेते, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार मैं लांगा मैंने आपकी सेवा के लिए, दूसरी बार मैं अपने भोग के लिए मैं आपको कैसे लांग सकता हूँ, तो मैं आराम से यहीं बैठा। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो अगर सेवा है, अगर आप किसी सेवा के लिए आप जा रहे हो, तो आप 100 बार आगे बढ़ के सेवा करो, लेकिन ज़बरदस्ती सबसे आगे भाग कर जो है ये सोचना कि मैं जगन्नाथ जी की आँखों से आँखें मिला के दर्शन करूँगा, वो अच्छी भावना नहीं है, है ना। एक बार एक बॉम्बे में मैं डिवोटी से मिला, तो उसने कहा मैं वहाँ पर बॉम्बे के पास है पांडुरंग जी है मंदिर या कौन सा है, एक बहुत ही फेमस टेंपल है बॉम्बे के पास में, पांडुरंग जी का है। तो उसने कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं है, तो उसने कहा कि मैं वहाँ पर गया तो मैंने पुजारी को वो 100-200 रुपये दिए, तो उसने मुझे विग्रह का आलिंगन करने दिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, चिंगारियाँ निकली क्या? उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तुमने कैसे जाके भगवान का तुम आलिंगन कर सकते हो अपने चर्म शरीर से। जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो दूर भाग रहे हैं कि भगवान मेरे शरीर को छू के भगवान जो है वो अपवित्र नहीं हो जाए। तुम में ऐसी जुर्रत कहाँ से आ गई कि तुम जाके भगवान के दिव्य विग्रह को तुम आलिंगन कर सको? इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ हो ही नहीं सकती। खैर वो भक्त मेरे से दोबारा कभी उसने बात नहीं की, लेकिन जो गलत है वो गलत है। ऐसे कैसे आप भगवान के विग्रह को आलिंगन कर सकते हो? तो क्या वो उसमें प्रेम है? क्या उसमें सेवा का भाव है? वो भोग है मेरा, है ना? लेकिन हम भगवान के, जब हम भगवान को स्नान करवाते हैं तो हम 100 बार आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं उस समय। लेकिन उसके अलावा जब हम सेवा नहीं कर रहे तो हमें बहुत ही आदरपूर्वक, हाँ, अपनी तुच्छता को ध्यान में रखते हुए हमें एक भगवान को बहुत समीप जाके उनको देखने का और दूसरे लोगों को धक्के मार मूर के भगवान के सामने जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ, आरती में सम्मिलित होना भी सेवा है, क्यों नहीं है? आरती में सम्मिलित होना चाहिए, भगवान की आरती हो रही है, भगवान की नज़र उतारी जा रही है, भगवान को सुख प्रदान किया जा रहा है। और जितने भी लोग आरती में भाग लेते हैं, जो अंदर पुजारी है, उन सब लोगों की तरफ से भगवान को आरती दिखा रहा है। अगर भगवान की आरती हो रही है, आप वहाँ खड़े हो, तो आप भी आरती कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जो अंदर पुजारी कर रहा है, पंच प्रदीप घुमा रहा है, सिर्फ वही आरती कर रहा है, नहीं, वो आपकी तरफ से भगवान की आरती उतार रहा है ना? सो आरती में भाग लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? हाँ,
हरे कृष्णा। जैसे कहते हैं कि आप भगवान के दर्शन करो, भगवान ने क्या पहना है, नीचे से ऊपर तक दर्शन करो, तो हम पीछे रह के आगे के दर्शन कैसे कर सकते हैं? वो मोटिव कहाँ से होता है कि आप देखिए भगवान ने क्या पहना है, हाथ में क्या है, राधा रानी के हाथ में क्या है, उन्होंने कौन सी माला पहनी हुई है, तो ये मोटिव कहाँ से होता है?
आए थे तो शुरू में ऐसा कहा जाता था कि भाई भगवान के दर्शन करने की विधि है,
इस ग्रह
से शुरू करो।
इस ग्रह सार्वभौम प्रभु का एक लेक्चर हमने सुना था, उसके अंदर उन्होंने बोला, तो ये मोटिव कहाँ से होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं?
वो अच्छी बात है नए भक्त के लिए कि वो भगवान से उसका एक संबंध बनेगा, भगवान से उसका एक रिश्ता बन जाएगा। हाँ, रिश्ता बनेगा तो उसके बाद अगला कदम आएगा सेवा का। फिर ये देखने की आवश्यकता है ना कि भगवान ने क्या पहना हुआ है, ये देखो कि भगवान को किस चीज़ की आवश्यकता है, ये देखो कि गुरु को क्या चीज़ की आवश्यकता है, वैष्णव को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अनुसार सेवा करो। सेवा करना भगवान के दर्शन करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो? हमारा पूरा गौड़िया जो संप्रदाय है वो विप्रलंब भाव पे आधारित है, वो विरह में सेवा के ऊपर आधारित है, संभोग से सेवा पर आधारित नहीं है। संभोग से सेवा अच्छी है, बहुत सुख है, लेकिन वो एक समुद्र की बूंद के समान है विप्रलंब भाव में सेवा के सामने। अगर हम भगवान की विरह में सेवा करते हैं तो उससे जो हमें सुख का अनुभव होगा वो संभोग से सुख की तुलना में अनंत गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अनंत गुना ज़्यादा प्रभावशाली है। तो हम छोटे सुख की तलाश में भी हो जाएंगे, हम बड़े सुख की तलाश में जाएंगे, हम परवाह नहीं करेंगे कि भगवान हमारे सामने मौजूद हैं या नहीं है, हम भगवान का हाथ पकड़ के चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, नहीं महत्वपूर्ण है। क्या हम भगवान की सेवा में लगे हुए भक्तों को सुख पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुँचा पा रहे हैं? और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपी भर्तुर पद कमलोर दास दास दासानुदास, मैं भगवान कृष्ण के दासों का दास हूँ। उन्होंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया, कभी भी ये दावा नहीं किया कि मैं कृष्ण की साक्षात पूजा करूँगा, कृष्ण की साक्षात सेवा करूँगा, मैं भगवान कृष्ण के भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा करूँगा, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा, है ना? और शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, हाँ, तस्मात् परतरं देवी तदिया नाम समर्चनम, है ना, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, कि सारे प्रकार के आराधनाओं में विष्णु की, कृष्ण की आराधना परम है, लेकिन तस्मात् परतरम देवी, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ आराधना है तदिया नाम समर्चनम, कि जो तदीय हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के दास हैं, उनकी सेवा करना भगवान कृष्ण की सेवा करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार हम किसी स्त्री का संग करना चाहें और हमें पता नहीं है कि उस स्त्री से सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इतना लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी भोगी व्यक्ति का संग करें तो वो हमें बताएगा कि स्त्रियों से कैसे सुख लिया जा सकता है, तो आप फिर अच्छे से स्त्री का सुख ले सकते हैं। उसी प्रकार हम सीधा भगवान की सेवा करने जाएंगे तो हमें नहीं पता कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान की क्या पसंद है, लेकिन जब हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों से सीखेंगे, तो भक्त हमें बताएंगे कि आप इन इन तरीकों से भगवान की सेवा कर सकते हो और ये सेवा अपराधों से आपको बचना चाहिए, तो हम और भी अच्छे से भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे, है ना? ठीक है। देखो गले 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 लगा क्यों रहा है, चलो प्रथा भी है, आप क्यों गले लगा रहे हो? उनको तो जानकारी नहीं है, वो अबोध है, लेकिन आप क्यों गले लगा रहे हो भगवान को? आपको तो पता है कि आप तुच्छ हो, आप में बहुत ही कमियां हैं, आपका मन शुद्ध नहीं है, कीचड़ से भरा हुआ है, काम वासनाओं से भरा हुआ है, तो ऐसी मानसिकता में आप कैसे भगवान का आलिंगन कर सकते हो? हाँ प्रभु, अगर कोई व्यक्ति भोग की थाली खुली रख के बैठा हुआ है तो आप जाकर उसमें मुंह नहीं मार सकते जब तक कि आपको आमंत्रित नहीं किया जाए। भगवान ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, भगवान विरोध नहीं कर रहे, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी कर लो। हाँ नहीं, क्यों छूना चाहते हो आप भगवान को? मतलब भगवान को छूने से क्या मिलेगा, करंट लगेगा, क्या होगा? वैष्णव के पैर कौन छूता है? कोई भी नहीं छूने देता वैष्णव अपने पैर। कौन छूता है वैष्णव के पैर? हाँ वो तो लौकिक बात हो गई ना, लेकिन वैष्णव के पैर नहीं छूते। गुरु भी हरेक को नहीं बोल अलाउ करता अपना पैर छूने के लिए। सो चरवाक मुनि कौन थे? चरवाक मुनि बहुत बड़ा भोगी था, नास्तिक था वो, तो उसका सिद्धांत है, ये प्रभुपाद कोट करते हैं चरवाक मुनि को, कि चरवाक मुनि कह रहा था कि भैया भोग करो, बाकी सब बेकार है। हाँ हाँ कर्ज लोग की पियो, तो उसने मनन किया और गलत सिद्धांत निकाल लिया उसने। नासाव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, तो अनेक मत चल रहे थे, उसने एक और मत निकाल दिया अपना कि हाँ भैया देखो मेरे हिसाब से भैया शरीर सब कुछ है, भोग करो। पूरी पाश्चात्य सभ्यता इस पे आधारित है कि भोग करो, कुछ भी हो जाए भोग करो।
तो वो इनसे मैंने कहे थे भीष्म पितामह, तो वो जब वो जा रहे थे तो कहीं ब्राह्मणों का ग्रुप था, वो उनसे मिलने आते, उन्होंने वो ब्राह्मणों ने कहा कि आप इस युद्ध के बाद जो रिजल्ट आया आप उससे दुखी मत होइए, क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा थी, आप दुखी मत होइए। तो उस उन्हीं ब्राह्मणों की सभा में एक ऐसा ब्राह्मण था जो निरुत्साहित करना चाहता था,
वो ये युद्ध हुआ और इतने लोगों को वो मारे गए, तो फिर जो है वो कुछ बाकी जो ब्राह्मण थे वहाँ पर उन्होंने उसको शाप दे दिया था और वो भस्म कर दिया था उसको, तो वो अगले जीवन में वो जो है चार वक्त मुनि के रूप में पैदा हुए, ऐसा वो बताया।
थैंक यू। सो